एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो लिखी तो गई थी करीब 250 साल पहले, लेकिन आज भी बहुत कुछ कहती है।
हाँ बिल्कुल, किताब है लेटर्स फ्रॉम एन अमेरिकन फार्मर और लेखक हैं ज़ियाद क्रेवका। ये किताब ना मतलब ये सवाल उठाती है कि भाई एक नया देश है, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, तो ये मिलकर एक नई पहचान, एक नया अमेरिकी कैसे बनते हैं।
और ये सवाल आज के ज़माने में कितने ज़रूरी लगते हैं ना। दुनिया भर में देख लीजिए, पहचान का मुद्दा, अपनापन, बाहर से आने वाले लोग, मतलब इमिग्रेशन, ये सब बातें कितनी गर्म हैं। क्रेवकर की किताब हमें अमेरिकी पहचान की बिल्कुल जड़ों तक ले जाती है।
सही कहा, ये दिखाती है कि कैसे वो बड़े बड़े आदर्श और जो कड़वी सच्चाइयां थीं उनके बीच से एक देश बना। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि समाज कैसे बनता है और लोग कैसे बदलते हैं।
तो चलें इस दिलचस्प सफर पर। सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लें, ज़ियाद क्रेवकर।
हाँ, उनका अपना जीवन भी बड़ा दिलचस्प था। फ्रांस के एक कुलीन परिवार में पैदा हुए थे 1735 में। अच्छी पढ़ाई लिखाई हुई, इंग्लैंड में भी पढ़े।
और फिर देखिए किस्मत उनको अमेरिका ले आई। एक लड़ाई चल रही थी, फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध। उसमें उन्होंने फ्रांसीसी सेना के लिए सर्वेक्षक का काम किया, नक्शे वगैरह बनाए।
अच्छा,
हाँ, तो इस वजह से उनको अमेरिकी बस्तियों में घूमने फिरने का, उनको करीब से देखने का खूब मौका मिला।
और फिर युद्ध के बाद तो उन्होंने गजब का फैसला लिया। अपनी फ्रांसीसी जड़ें, वो नवाबी शान सब छोड़कर 1765 में न्यूयॉर्क में ब्रिटिश नागरिक बन गए।
नाम भी बदल लिया, जे हेक्टर सेंट जॉन।
अरे वाह। हाँ, फिर एक प्रे की लड़की से शादी की और न्यूयॉर्क में पाइन हिल नाम का एक फार्म खरीद लिया। और करीब 10 साल तक वो एक आम किसान की तरह रहे, खेतीबाड़ी की।
और देखिए यही चीज उनके नजरिए को बहुत खास बना देती है। वो एक ही टाइम पे मतलब बाहरी भी थे क्योंकि यूरोप से आए थे, और अंदरूनी भी क्योंकि अब अमेरिकी नागरिक थे, किसान थे।
सही।
तो ये जो डबल पर्सपेक्टिव है ना, इससे वो अमेरिकी समाज को बहुत गहराई से देख पाए, उसका विश्लेषण कर पाए। उनका अनुभव सिर्फ किताबी नहीं था, वो जमीन से जुड़ा था, जिया हुआ था। फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच, जर्मन, यहाँ तक कि जो वहाँ के मूल निवासी थे, उन सब के बीच रहकर उन्होंने देखा कि ये नया समाज कैसे बन रहा है।
कमाल है। तो ये तो हुई लेखक की बात, जिनका नजरिया वाकई में बहुत अनूठा था। अब जरा किताब पर आते हैं, लेटर्स फ्रॉम एन अमेरिकन फार्मर। ये किताब भी अपने आप में थोड़ी अलग है। ये असल में 12 खत हैं।
खत? अच्छा।
हाँ, चिट्ठियां। जैसे एक कोई काल्पनिक अमेरिकी किसान है, जेम्स नाम का, वो इंग्लैंड में बैठे किसी साहब को लिख रहा है, अमेरिका के बारे में बता रहा है।
हाँ, ये बात सही है। उस जमाने में यूरोप में बड़ी उत्सुकता थी अमेरिका को लेकर, भई ये नई दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं वहाँ। तो जेम्स के खतों का मकसद यही था कि यूरोप वालों की जिज्ञासा शांत हो, और साथ में ये भी समझाना था कि ये अमेरिकी आखिर चीज क्या है।
हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि उस वक्त के अमेरिकी समाज का, वहाँ की संस्कृति का एक बहुत गहरा अध्ययन है ये। जैसे एथनोग्राफिक स्टडी होती है ना, वैसा कुछ।
और किताब का जो सबसे बड़ा सवाल है वो क्या है?
वो यही है, तो फिर ये अमेरिकी, ये नया इंसान कौन है?
अच्छा, और क्रीवेकर का जवाब क्या है इस पर?
वो कहते हैं कि अमेरिका एक प्रयोगशाला जैसा है, जहाँ यूरोप के अलग अलग देशों से लोग आते हैं, अपनी पुरानी पहचानें पीछे छोड़ते हैं, और यहाँ की आज़ादी, अपनी ज़मीन का मालिक होने का जो एहसास है, और एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का जो तजुर्बा है, उससे वो एक बिल्कुल नए किस्म के इंसान बन जाते हैं।
मतलब माहौल बदल देता है इंसान को।
हाँ, खासकर खेती वाली ज़मीन। वो मानते थे कि ज़मीन लोगों के स्वभाव को गढ़ती है, उनको जिम्मेदार बनाती है।
लेकिन कहानी शायद इतनी सीधी भी नहीं है, मतलब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इस किताब की खूबी है। ये सिर्फ अमेरिका का गुणगान नहीं करती, ये एक सफर है। शुरू होता है उम्मीद से, सुनहरे सपनों से, कि यहाँ सबको मौका मिलेगा, सब बराबर होंगे।
लेकिन
लेकिन फिर धीरे धीरे कड़वी सच्चाइयां सामने आती हैं, विरोधाभास दिखते हैं, जैसे गुलामी की क्रूरता, फिर अमरीकी क्रांति की हिंसा, बंटवारा, ये सब भी कहानी का हिस्सा बनते जाते हैं।
अच्छा, तो मतलब ये आशावाद से शुरू होकर मोहभंग तक जाती है, डिसिल्यूजनमेंट।
हाँ, कुछ वैसा ही। शुरू में अमरीकी चरित्र के जो अच्छे पहलू हैं, अवसर, मेहनत, आत्मनिर्भरता, अपनी काबिलियत से आगे बढ़ना, वो सब दिखाती है। लेकिन फिर वो पाठक को अमेरिकी सपने के अंधेरे कोनों में भी ले जाती है, जहां मुश्किल नैतिक सवाल उठते हैं।
दिलचस्प। तो चलिए कुछ खास पत्रों पर थोड़ी और बात करते हैं, जैसे वो शुरुआती पत्र।
हाँ, पहले तीन पत्र एक तरह से माहौल बनाते हैं। पहले पत्र में जेम्स, जो कहानी सुना रहा है, वो खुद को एक सीधा साधा किसान बताता है। कहता है कि भाई मुझे लिखना विखना ज्यादा आता नहीं, इससे वो थोड़ा भरोसेमंद लगता है।
अच्छा, और दूसरा पत्र?
दूसरा पत्र अमरीकी गांव के जीवन की एक बहुत ही प्यारी, मतलब लगभग आदर्श तस्वीर पेश करता है। अपनी जमीन पर मेहनत करने का सुख, आजादी का एहसास, प्रकृति से नजदीकी। क्रेवकर यहां ये बताते हैं कि कैसे खेती करना सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि इंसान को नैतिक और जिम्मेदार भी बनाता है।
मतलब जमीन का मालिक होना एक तरह से अच्छी नागरिकता सिखाता है।
हाँ बिल्कुल, उनका यही मानना था कि इससे गर्व आता है, जिम्मेदारी आती है।
और फिर आता है तीसरा पत्र, व्हाट इज एन अमेरिकन। ये तो शायद सबसे मशहूर है।
हाँ बिल्कुल, इसमें वो सीधे सीधे उस बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, और यही वो मशहूर लाइन आती है कि अमेरिका एक पिघलने वाला बर्तन यानी मेल्टिंग पॉट है, जहां दुनिया के सारे देशों के लोग मिलकर इंसानों की एक नई नस्ल बन जाते हैं।
हाँ, वो कहते हैं कि ये नया इंसान अपने पुराने यूरोपियन रंग ढंग, वो पूर्वाग्रह सब छोड़ देता है, यहाँ आकर वो नए सिद्धांतों पर जीता है, मेहनत, अपना भला, क्योंकि वो अपने लिए काम कर रहा है, और थोड़ी बहुत धार्मिक सहनशीलता भी।
और जमीन का मालिक बनना इसमें सबसे बड़ी चीज है। यूरोप की तरह यहाँ जन्म से तय नहीं होता कि कौन ऊंचा कौन नीचा, थोड़ी ज्यादा बराबरी है।
इसके बाद चौथे से आठवें पत्र में क्रेवकर हमें कहीं और ले जाते हैं, नैंटिकेट द्वीप।
हाँ, ये एक बिल्कुल अलग दुनिया है। अटलांटिक महासागर में एक छोटा सा द्वीप, वहां के लोग व्हेल मछली का शिकार करते थे। ये कमाल की केस स्टडी है।
और ये जरूरी क्यों है?
क्योंकि ये दिखाता है कि अमेरिकी चरित्र सिर्फ खेती की जमीन से ही नहीं बनता। नैनकेट के लोगों को समुद्र ने बनाया था। उनका रहन सहन, रीति रिवाज, उनकी हिम्मत, उनका आपस का भाईचारा, सब कुछ उनकी खास जगह और व्हेल के शिकार जैसे खतरनाक काम से जुड़ा था।
अच्छा, मतलब अमेरिकी पहचान काफी लचीली थी, अलग अलग माहौल में ढल सकती थी।
हाँ बिल्कुल, ये यही दिखाता है। लेकिन कहानी फिर एक बड़ा मोड़ लेती है जब जेम्स दक्षिण की तरफ जाता है, खासकर नौवें पत्र में जब वो चार्ल्स टाउन पहुंचता है।
ओ हाँ, ये वाला पत्र मैंने सुना है, ये काफी परेशान करने वाला है।
बहुत ज्यादा। यहां जेम्स का सामना होता है गुलामी की भयानक विभत्स सच्चाई से। एक तरफ बागानों के मालिकों की शान शौकत, दूसरी तरफ गुलामों की वो हालत कि देखकर रूह कांप जाए। ये देखकर अमेरिकी आजादी और बराबरी के उसके सारे आदर्श हिल जाते हैं।
इसमें वो कोई खास घटना भी बताते हैं ना?
हाँ, एक बेहद दर्दनाक वाकया है। एक गुलाम को पिंजरे में बंद करके मरने के लिए छोड़ दिया गया है, भूखा प्यासा, और पंछी उसे नोच रहे हैं। ये देखकर जेम्स दहल जाता है। वो पूछता है कि आजादी की इस धरती पर ऐसी हैवानियत कैसे हो सकती है। ये अमेरिकी सपने के दिल में छिपा एक बहुत गहरा काला सच था।
और क्रेवकर इस पर क्या कहते हैं? मतलब वो इसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो गुलामी को सही ठहराने वाले जो तर्क दिए जाते थे, उनको दोहराने से भी मना कर देते हैं। उनका वो ठंडा सा अलविदा कहना, जैसे वो उस बहस से अपनी नैतिक थकान और दूरी दिखा रहे हों, ये पाठक को भी सोचने पर मजबूर करता है।
इस भारी पत्र के बाद दसवें में वो फिर प्रकृति की तरफ लौटते हैं, सांप और हमिंगबर्ड।
हाँ, ये थोड़ा सुकून देता है, लेकिन ये सिर्फ प्रकृति का वर्णन नहीं है, इसमें भी एक गहरा मतलब छिपा है।
वो क्या?
जैसे प्रकृति में सुंदरता भी है और क्रूरता भी, जीवन भी है और मौत भी, वैसे ही अमेरिकी समाज में आजादी और गुलामी, अच्छाई और बुराई साथ साथ हैं। शायद वो ये कह रहे हैं कि ये विरोधाभास जिंदगी का हिस्सा हैं।
अच्छा, और ग्यारहवें पत्र में?
उसमें एक रूसी मेहमान आता है और वो अमेरिकी जीवन की, खासकर किसानों की समझदारी की तारीफ करता है, तो क्रेवकर की बात को एक बाहरी नजरिए से सहारा मिल जाता है।
और फिर आता है आखिरी पत्र, बारहवां, डिस्ट्रेसेस ऑफ अ फ्रंटियर मैन,
सरहद पर रहने वाले की मुसीबतें।
हाँ, और यहाँ आकर वो शुरुआती उम्मीद और जोश तो था, वो पूरी तरह खत्म हो जाता है।
अमेरिकी क्रांति शुरू हो गई है, जेम्स का वो शांत खेती वाला जीवन सब उथल पुथल हो गया है।
वो इस लड़ाई झगड़े से परेशान है
बहुत ज्यादा। उसे समझ नहीं आता कि वो किसका साथ दे, अंग्रेजों का या क्रांतिकारियों का। वो तो बस एक शांति से जीने वाला किसान है। ये जो राजनीतिक बंटवारा है, ये उसे बिल्कुल पराया महसूस कराता है।
और अंत में वो क्या करता है?
वो एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला लेता है। वो अपनी जमीन, अपना अमेरिकी सपना, सब कुछ छोड़कर, जो वहां के मूल निवासी हैं, उनके पास जाकर रहने की सोचता है।
क्या? आदिवासियों के पास?
हाँ, उसे लगता है कि शायद वो लोग, जिन्हें असभ्य कहा जाता है, वो इस सभ्य समाज से ज्यादा मानवीय हो। ये अमेरिकी प्रयोग कितना नाजुक था, उसका भविष्य कितना अनिश्चित था, इस पर एक बहुत उदासी टिप्पणी है ये।
बाप रे, तो इस पूरी किताब से मतलब कई बड़े विचार निकलते हैं ना, थीम्स।
हाँ बिल्कुल। पहला तो वही मेल्टिंग पॉट वाला आइडिया कि कैसे अलग अलग जगहों से आए लोग एक नई पहचान बना रहे थे।
ये तो आज भारत में भी हम देखते हैं, इतनी सारी संस्कृतियां, भाषाएं, धर्म सब साथ रहते हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं और कुछ नया बनता रहता है। पहचान कोई रुकी हुई चीज थोड़ी है, वो तो बहती रहती है।
सही कहा। दूसरा बड़ा विचार है जमीन और इंसान के चरित्र का रिश्ता। क्रेवकर को लगता था कि अपनी जमीन होना इंसान को आजाद, जिम्मेदार, अच्छा नागरिक बनाता है, वो कृषि वाला आदर्श।
और क्या आज भी ये उतना ही सच है? अब जब ज्यादातर लोग शहरों में हैं, किराए पर रहते हैं, क्या तब भी प्रॉपर्टी का मालिक होना हमें ज्यादा जिम्मेदार महसूस कराता है? सोचने वाली बात है।
हाँ, तीसरा थीम है कि हमारा माहौल हमें कैसे बनाता है, वो पर्यावरणीय नियतिवाद। किसान का स्वभाव अलग, नैनटकट के नाविक का अलग, दक्षिण के बगान वालिक का अलग।
ये तो हम अपने आसपास भी महसूस कर सकते हैं, जैसे बड़े शहर में रहने वाले का सोचने का तरीका, उसकी जिंदगी की रफ्तार शायद एक शांत गांव में रहने वाले से अलग होती है। माहौल, हमारी सोच, हमारे मौके, सब पर असर डालता है।
और फिर वो सबसे अहम तनाव, अमेरिकी सपना बनाम अमेरिकी हकीकत। एक तरफ आजादी, मौके, बराबरी का वादा, दूसरी तरफ गुलामी, हिंसा, नाइंसाफी की सच्चाई।
ये आदर्श और असलियत के बीच की जो खाई है।
और ये तो हर समाज में होता है,
हाँ,
किसी न किसी रूप में। हम बड़े बड़े आदर्शों की बात करते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कई बार बहुत अलग, बहुत मुश्किल होती है।
हाँ,
और इन विरोधाभासों को देखना, उन्हें मानना जरूरी है। जैसे क्रेवकर ने गुलामी के मुद्दे पर किया, ये हमें आज के जमाने के जो सामाजिक अन्याय हैं, जो सिस्टमिक इनजस्टिस है, उसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे समाज में भी ऐसी चीजें हैं जो हमारे आदर्शों के खिलाफ हैं, पर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं?
बिल्कुल। और आखिरी थीम, क्रांति का वो वादा और खतरा। कैसे राजनीतिक उथल पुथल सब कुछ बिखेर सकती है, लोगों को मुश्किल फैसलों के लिए मजबूर कर सकती है। जेम्स की जो लाचारी है, वो आज के दौर में भी कितनी पहचानी सी लगती है, जब राजनीतिक ध्रुवीकरण इतना बढ़ गया है कि आम इंसान का सुकून छिन जाता है।
इस किताब में कुछ लाइनें तो ऐसी हैं जो दिमाग में बैठ जाती हैं।
हाँ, जैसे वो सवाल, तो फिर ये अमेरिकी, ये नया आदमी कौन है? यहाँ सभी राष्ट्रों के व्यक्ति पुरुषों की एक नई नस्ल में पिघल जाते हैं। ये तो जैसे अमेरिकी पहचान की परिभाषा ही बन गई।
और ये कहना कि अमेरिकी एक नया आदमी है जो नए सिद्धांतों पर कार्य करता है, ये बदलाव और नई सोच पर जोर देता है।
हाँ, गुलामी पर वो दर्द भरा सवाल भी याद रह जाता है, ओ प्रकृति तुम कहाँ हो, क्या ये अश्वेत तुम्हारे बच्चे नहीं है जैसे हम हैं? ये उस वक्त के नैतिक संकट को दिखाता है। यहाँ पे चार्ल्सटन में गुलामी के पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों को दोहराने से उनका वो साफ इनकार, उसमें एक ठंडी सी सच्चाई है।
और क्रांति के बीच फंसे आम आदमी की वो उलझन, मैं शांति का प्रेमी हूँ, क्या मुझे रंगीन कपड़े के टुकड़े या आधे बने बटन से परिभाषित किया जाना चाहिए? ये दिखाता है कि कैसे बड़ी बड़ी राजनीतिक लड़ाइयों में आम इंसान की कोई पहचान नहीं रह जाती।
तो ये सब बातें, ये विचार आज हमारे लिए कैसे काम किए हैं?
कई तरह से। एक तो क्रेवकर का वो मेल्टिंग पॉट का विचार हमें आज भी राष्ट्रीय पहचान, बाहर से आए लोगों, अप्रवासन और सांस्कृतिक मेलजोल के बारे में सोचने में मदद करता है। क्या अलग अलग संस्कृतियों का मिलना हमेशा पिघलना ही होता है, या वो साथ साथ भी रह सकती हैं, एक मोज़ेक की तरह?
और ये हमें अपने समाज के अंदर जो विरोधाभास हैं, जो नाइंसाफियां हैं, उन्हें पहचानने और उनका सामना करने की हिम्मत देता है, चाहे वो किसी भी तरह का अन्याय हो, उसे मानना, उसे स्वीकार करना बदलाव की पहली सीढ़ी है।
बिल्कुल। साथ ही जेम्स की कहानी हमें राजनीतिक कट्टरता के खतरों से भी सावधान करती है, कैसे ये लोगों को बांटती है और इंसानियत को नुकसान पहुंचाती है। शांति और एक दूसरे को समझने की कोशिश करना कितना जरूरी है।
और हाँ, प्रकृति से जुड़ाव। क्रेविंकर का जो प्रकृति प्रेम है, वो हमें याद दिलाता है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी हमें अपने आसपास के माहौल, पेड़ पौधों, जानवरों से रिश्ता बनाए रखना चाहिए। इसका सुकून अलग ही होता है।
तो इस पूरी बातचीत से हमारे लिए आखिरी सीख क्या है? इस किताब का सबसे टिकाऊ संदेश मेरे लिए तो यह है कि कोई भी राष्ट्रीय पहचान, चाहे वो अमेरिकी हो या भारतीय या कोई और, वो एक बहुत उलझी हुई जटिल चीज है। ये हमेशा बनती रहती है, बदलती रहती है। इसमें उम्मीदें भी हैं, नाउम्मीदी भी, आज़ादी भी है और जुल्म भी।
सही का। और ये भी कि लोग, जगह और उनके सिद्धांत, ये सब आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। हमारा माहौल हमें बनाता है और हम माहौल को। किताब की जो ईमानदारी है ना, वो भी कमाल की है। ये अमेरिकी सपने की चमक दिखाती है तो उसकी गहरी परछाई से भी मुंह नहीं मोड़ती। ये एक तरह की आप कह सकती हैं आलोचनात्मक देशभक्ति सिखाती है, क्रिटिकल पेट्रियोटिज्म, कि अपनी देश से प्यार करो लेकिन उसकी कमियों को भी देखो और उन्हें सुधारने की कोशिश करो।
मेरे लिए जो सबसे हैरान करने वाली बात रही वो ये कि कैसे एक बाहरी आदमी जो बाद में अंदरूनी बना, उसने एक देश की पहचान को समझने और दुनिया को समझाने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, और कैसे उसका वो शुरुआती जोश, वो आशावाद धीरे धीरे असलियत की चट्टान से टकराकर टूटा। ये जो यात्रा है ना किताब की, वो अपने आप में एक बड़ा सबक है।
हाँ, ये किताब हमें चुनौती देती है कि हम किसी भी समाज को सिर्फ उसके दावों या आदर्शों से ना आंकें, बल्कि उसकी सच्चाइयों और विरोधाभासों के साथ पूरी ईमानदारी से उसे समझने की कोशिश करें।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।